सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले मेरे साहसी युवा साथियों नमस्कार। आज 14 दिसंबर 2018 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान मित्रों का जिन्होंने 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं मुकुल कोली नई दिल्ली से, सुशील कुमार सिंह पलामू झारखंड से, मोहम्मद इब्रान खान मेरठ उत्तर प्रदेश से और रितु सैनी आपका गांव है टांडा जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। तो मुकुल, सुशील, मोहम्मद इमरान और रितु आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक अलग से सूचना है और यह सूचना उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी अक्टूबर नवंबर की हमारी क्लासेस में आए थे और सूचना यह है कि जो क्लास में लेक्चर हुए थे उनसे रिलेटेड जो नोट्स थे वो आपको इससे पहले भेजे जा चुके हैं, वो आप सबको मिल भी गए हैं जैसे कि आप लोगों के ईमेल से मालूम होता है। और मित्रों उसकी एक और किस्त जो बिल्कुल नई तैयार की गई है और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्री और मेन दोनों दृष्टियों से और परमानेंट नेचर के नोट्स कल आप सबके मेल पर भेजे गए हैं जिनके पेजेस मैं समझता हूं कि लगभग 60 के आसपास होंगे, 60 पेज के नोट्स इस तरह के आप लोगों के मेल पर भेजे गए हैं। तो आप सब अपने अपने मेल को एक्सेस करके देख लें, वो आपके लिए बहुत बहुत और बहुत अधिक उपयोगी होंगे। जब आप उन्हें पढ़ेंगे देखेंगे तभी शायद आप मेरी कही बातों पर विश्वास कर सकेंगे और उनका सही तरीके से इस्तेमाल करके लाभ भी उठा सकेंगे। मित्रों जैसा कि मैंने कहा शुक्रवार है तो कुछ सूचनाएं भी हैं और सूचनाएं ये हैं कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है। हाँ, कल आपको प्रेस क्लिपिंग्स यानी कि अखबार की जो कतरने हैं वो एज इट इज मिलेंगी जैसी कि मिलती रही हैं। साथ ही योजना और कुरुक्षेत्र के आपको दो दो आर्टिकल मिलेंगे, दो हिंदी में दो इंग्लिश में, यानी कि दो कुरुक्षेत्र के और दो योजना के टोटल 4 आर्टिकल ताकि आप इत्मीनान के साथ उन्हें पढ़ सकें। और चूंकि 2 दिन की आपकी छुट्टियां होंगी इसलिए छुट्टियां का मतलब है डेली ऑडियो लेक्चर से, तो इसलिए आपको साप्ताहिक प्रश्न भी एक उपलब्ध कराया जाता है जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है और ये इस उद्देश्य से आपको दिया जाता है कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकें। और इसके अतिरिक्त जो हमारे क्लास स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। मित्रों मुख्य विषय के रूप में आज मैं आपसे एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के बारे में कुछ बातें करूंगा और वह एजेंसी है इंटरपोल। लेकिन आइए पहले हम थोड़ी दूसरी खबरों को देख लेते हैं। न्यूज में आपने एक खबर सुनी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री हैं उनका स्टेटमेंट था। उनका स्टेटमेंट ये था कि सरकारों को लोक लुभावन योजनाओं को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अर्थ उसका यह था कि जब हम लोक लुभावन घोषणाएं करते हैं तो उससे इनफैक्ट सही लाभ नहीं होता है, बेहतर होगा कि हम ठोस काम करें यानी कि एक आधारभूत संरचनाओं का विकास करें और एक बार अगर हम ऐसी संरचनाओं का विकास कर लेते हैं तो उसी पर एक पुख्ता मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाली इमारत खड़ी की जा सकती है। उनके कहने का आशय ये था। देखिए यहां उन्होंने जो लोक लुभावन योजना की बात कही है उसका आशय क्या है, क्या होती है लोक लुभावन योजना। लोक लुभावन योजना का मतलब है जिसे आप कहते हैं पॉपुलरिटी वाली घोषणाएं, ऐसी घोषणाएं जो आपको पॉपुलर बना दे रही हो। जैसे अभी चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि लगभग सभी पार्टियों ने अपने अपनी तरह से घोषणाएं की और इसके बारे में 3-4 दिन पहले हम लोगों ने थोड़ी सी बात भी की थी कि हम किसानों के कर्ज माफ कर देंगे, सत्ता में आने के 10 दिन के अंदर ऐसा कर देंगे। कुछ कह रहे हैं कि हम आपको साइकिल देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्मार्टफोन देंगे, कुछ कह रहे हैं हम कंप्यूटर देंगे। मतलब अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बातें लोग रख रहे हैं। स्वाभाविक है कि जब सामान्य मतदाता इस तरह की घोषणाएं सुनता है तो आप यूं कह लीजिए कि उसके चक्र में आ जाता है या लालच में फंस जाता है, और पार्टियां ऐसा समझती हैं कि इस आकर्षण से वे हमें मत वोट भी दे देंगे और इस तरह से चुनाव जीतने में मदद मिलेगी। लेकिन मित्रों, इस बार जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव की समीक्षा इस रूप में सामने आ रही है कि शायद अब लोक लुभावन जो घोषणाएं हैं वो राजनीतिक दलों को उतना लाभ नहीं पहुंचा रही हैं। उसका कारण यह है कि सब करने लगे हैं, 2 रुपए किलो चावल देंगे, 1 रुपए किलो गेहूं देंगे, फलाना देंगे। तो जब सभी पार्टियां ऐसा कर रही हैं तो सीधी सी बात है कि कोई भी आ जाए उनको वो फायदा मिलना है। लेकिन चलिए, ये तो एक राजनीतिक पक्ष हो गया, लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि दरअसल उससे देखिए, एक तो टैक्स पेयर यानी कि जो टैक्स दे रहे हैं यानी कि पब्लिक का ही वो पैसा है, पब्लिक का पैसा इस तरीके से बांटा जा रहा है। इसके बारे में एक दूसरा सवाल ये भी खड़ा किया जाता है कि क्या यह एक प्रकार से वैध रिश्वत जैसा नहीं है? वैध रिश्वत इस मायने में कि आप घोषणा करके उन्हें दे रहे हैं, लोक लुभावन घोषणाएं करके उन्हें दे रहे हैं, लेकिन यह पैसा तो सरकार का है, क्योंकि पार्टी अपने फंड से तो पैसा दे नहीं रही है, सरकार का पैसा दे रही। सरकार का पैसे का मतलब है पब्लिक का पैसा दे रही, तो पब्लिक का पैसा कुछ से लेकर के और कुछ को वो बांट रही है, और इसका सबसे बड़ा संकट है कि उनमें कोई क्षमता पैदा नहीं हो रही है, इससे उनमें कोई ऐसी योग्यता, क्षमता, कौशल का विकास नहीं हो रहा है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें या उसका इस्तेमाल करके वो अपनी स्थिति को बेहतर बना सकें, बेहतर जीवन स्थिति को पा सकें। तो अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है उसका पर्पज यही है, या कह लिए उद्देश्य यही है कि हम इन पैसे का इस्तेमाल ठोस विकास के लिए करें। इसके बाद मित्रों, अखबार में खबर है कि जो ब्रिटेन में जो ब्रेग्जिट हुआ था, तो ब्रेग्जिट को लेकर के जो अभी सत्ताधारी पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी वहां सत्ता में है, जिनके हेड हैं अपने थेरेसा मे जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके अपने ही पार्टी के लोगों में विरोध हो रहा था कि नहीं, ये ब्रेग्जिट नहीं होना चाहिए। तो वहां एक संकट पैदा हो गया था कि पता नहीं अब इस पार्टी का बहुमत रह गया है या नहीं रह गया, क्योंकि पार्टी के अंदर ही प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा है। तो जैसे हमारे यहां अविश्वास प्रस्ताव आता है, वहां प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और कल अविश्वास प्रस्ताव पर बकायदे मतदान हुआ और मतदान में थेरेसा मे को विश्वास प्राप्त हो गया सदन का, तो इस तरह से उनकी सरकार अभी बच गई है। मैं केवल एक इस रूप में इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि वहां का जो पैटर्न है वो बिल्कुल हमारे जैसा ही पैटर्न है। और जब हम संविधान निर्माण की बात पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि कैसे जो हमारा मेन ढांचा है वो मूलतः ब्रिटेन के संविधान के ही अनुकूल है, ब्रिटेन के ही पैटर्न पर है। आइए दोस्तों, अब हम मुख्य विषय पर आते हैं और वह इंटरपोल। देखिए, इस विषय को मैंने इसलिए चुना है कि आपने न्यूज में सुना होगा कि जो इंटरपोल है उसने एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है, और ये नोटिस जारी किया गया है मेहुल चौकसे के अगेंस्ट, जो पंजाब नेशनल बैंक के लगभग 13,000 करोड़ रूपये लेकर के और फिर भारत से वो विदेश में भाग गए हैं, और अब संकट भारत सरकार के लिए हो रहा है कि उन्हें कैसे भारत वापस लाया जाए। ये एक प्रॉब्लम सी चल रही है, राइट? तो अब इसमें जो देखिए, जो एजेंसी है इंटरपोल, इसके बारे में मैं कुछ आपको बातें कर बता दूं। पहला तो यह है कि जो रेड कॉर्नर नोटिस है, आप इसको समझ लीजिए। बेसिकली ये नोटिस, जैसे भारत है, भारत मेहुल चौकसे को लाना चाह रहे हैं, ठीक, और वो विदेश में है तो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो भारत सरकार क्या करेगी कि रिक्वेस्ट करेगी इंटरपोल से कि भाई आप हमें इन्हें वापस लाने में मदद कीजिए, ठीक है। अब जो इंटरपोल है वो देखेगा कि उनके गिरफ्तारी की बात जो भारत सरकार कह रही है तो उनका जो वारंट जारी हुआ है वो वैलिड है कि नहीं है, और जब उसको लगेगा कि नहीं वारंट तो सही है यानी कि इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तब फिर इंटरपोल, यानी कि इंटरपोल क्या है मैं आगे आऊंगा, उनको पकड़ने के लिए बकायदे एक नोटिस जारी करेगा जिसे हम कहते हैं रेड कॉर्नर नोटिस की, यानी उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मतलब एक इसी के सामानांतर ने इससे पहले के एक और नोटिस होती है जिसे आप कहते हैं ब्लू कॉर्नर नोटिस, इसकी भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कभी कभी प्री में, इस तरह की चीजें पूछ ली जाती हैं। ब्लू कॉर्नर नोटिस में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, ब्लू कॉर्नर नोटिस में इस बात के लिए कहा जाता है कि भाई उनका पता लगाया जाए कि वो कहां छिपे हुए हैं, कहां हैं, उनकी क्या पहचान है, इसके जानकारी के लिए नोटिस जारी किया जाता है। अब देखिए ये जो इंटरपोल है बेसिकली, इसे सामान्यतया बोलचाल की भाषा में हम इंटरनेशनल पुलिस कह देते हैं, और है भी वो इंटरनेशनल पुलिस ही है, लेकिन इसका जो सही नाम है वो है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ICPO। लेकिन हम इंटरपोल, इंटरनेशनल की जगह इंटर कह देते हैं और पुलिस की जगह पोल कहते हैं, तो इंटरपोल के नाम से यह संस्था ज्यादा पॉपुलर है। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आप देखते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1918 में जब खत्म हो गया तो फिर उसी समय में लीग वगैरह की बात होने लगी थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए, तो उसी दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 1923 में इंटरपोल की स्थापना हो गई थी, जबकि आप देखते हैं कि यूएनओ वगैरह तो 1945 में आया, लेकिन चलिए लीग ऑफ नेशन तो उससे पहले धीरे धीरे काम करना शुरू कर ही चुका था, तो आप यूं कह लीजिए कि 5 साल के बाद इस संगठन के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में है, फ्रांस की एक जगह है लियोन, वहां इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो मेन काम है, बहुत सिंपल शब्दों में अगर हम जानना चाहें, तो केवल यह है कि जो इस संगठन के जितने भी सदस्य देश हैं, उन सदस्य देशों की जितनी भी पुलिस जो भी पुलिस होती हैं, उन पुलिस के बीच में संपर्क स्थापित करना और उन्हें सहयोग देना। यानी कि जैसे मेहुल चौकसी के मामले में भारत की पुलिस है जो उसे अरेस्ट करना चाह रही है, लेकिन चूंकि वो दूसरे देश में है तो भारत की पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, तो ऐसी स्थिति में जो इंटरपोल है वो अपने हिसाब से काम करेगा और भारतीय पुलिस को इस बात जो भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में चाहिए प्रोवाइड करेगा, साथ ही गिरफ्तार करने में भी मदद करेगा यदि उसे अपनी सारी गतिविधियां उसके लायक मालूम होती हैं। तो मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है। और देखिए किन किन चीजों के बारे में इस तरह का सहयोग करता है, वो कौन कौन से अपराध होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी भी अपराध के लिए वो सहयोग करेगा पुलिस के, तो एक बार मैं इत्मीनान के साथ आपको बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में हो, कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं। भ्रष्टाचार, बच्चों के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध, साइबर क्राइम, नशीले पदार्थों की तस्करी, पर्यावरण संबंधी अपराध, फाइनेंशियल क्राइम, हथियार संबंधी अपराध, हथियार का मतलब है कि जो आग्नेय हथियार आप कहते हैं ना, जैसे कि आप कहते हैं फायर आर्म्स, भगोड़ा, आतंकवाद, मानव व्यापार, समुद्री तस्करी, संगठित अपराध जिसे आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं, नकली और अवैध सामग्री का दुर्व्यापार, दुर्व्यापार कहने का मतलब है ब्लैक मार्केट, ब्लैक स्मगलिंग करना, और खासकर वाहन संबंधी अपराध। इस तरह के अपराध में अगर कोई व्यक्ति शामिल है और दूसरे देश में भागकर चला गया, भगोड़ा बन गया है, तो उसमें फिर इंटरपोल उस देश की मदद करती है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी सूचना इंटरपोल के बारे में है। तो मुख्य विषय के बारे में फ्रेंड्स बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से 3 दोस्तों के नाम हैं उमेश शाक्य, शुभदीप सिन्हा और संजय कुमार सहारनपुर से, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मित्रों इसी के साथ ही, इससे पहले कि मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करूं, शुभकामनाएं देना चाहूंगा आपके 2 दिनों के लिए कि आपके ये जो 2 दिन हैं बहुत ही सुखद तरीके से व्यतीत हों। और शुभकामनाओं के बाद अब आप सब मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।